यह न्यूज टॉक है आपका राष्ट्रीय राजनीतिक और वैश्विक घटनाओं पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित शीर्ष समाचार स्रोत। केवल 5 मिनट में प्रतिदिन समाचार प्राप्त करें और सूचित रहें। आज के पहले लेख की शुरुआत करते हुए, मुंबई के शिवाजी पार्क में हुई एक बड़ी घटना जिसे नाम दिया गया था भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन। इस ऐतिहासिक घटना में राहुल गांधी ने एक बहादुरी भरा चुनौती उठाई। उन्होंने किसी व्यक्ति के बजाय मोदी के पीछे की ताकत का सामना करने की बात कही। इस यात्रा का मुख्य संदेश ये था कि लड़ाई सत्ता के खिलाफ है, न कि किसी एक व्यक्ति के खिलाफ। राहुल गांधी के इस साहसिक कदम ने न सिर्फ उनके समर्थकों को बल्कि देश के कई हिस्सों के नागरिकों को भी प्रेरित किया। इस प्रकार भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन न सिर्फ एक यात्रा का अंत था बल्कि एक नई शुरुआत का आगाज भी था। इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने भारत को एकता की ओर बढ़ने का संदेश दिया। आगे बढ़ते हुए एक नए लेख पर ध्यान दें। राहुल गांधी पर विनायक दामोदर सावरकर का अपमान करने का आरोप है। इस आलोचना को आगे बढ़ाते हुए सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। रंजीत ने राहुल गांधी की यह कहते हुए आलोचना की है कि वे राजनीतिक लाभ के लिए अपने दादा का अपमान कर रहे हैं। आगे चल के इन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने बार बार राष्ट्रवादी कवि और स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया है। इस मुद्दे पर विवाद गहराता ही जा रहा है और यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। मित्रों, आइए चलते हैं अगले समाचार की ओर। साल 2023 समाजवादी पार्टी के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। समाजवादी पार्टी, जिसे 2019 के चुनावों में बीएसपी के साथ गठबंधन से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था, अब उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिला रही है। ये कदम उनके लिए किसी बड़े दाव की तरह है, विशेषकर तब जब पिछले चुनावों में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अधिकांश लोकसभा सीटें जीती थीं। क्या ये गठबंधन समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा और क्या वे बीजेपी की बढ़त को रोक पाएंगे, यह वक्त ही बताएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करता हूं नए खंड में, जहां हम लेकर आए हैं एक रोचक समाचार। 2018-2019 में आम आदमी पार्टी यानी आपको वित्तीय सहयोग देने वालों में बजाज ग्रुप में सबसे आगे रहते हुए मुख्य भूमिका निभाई है। इस अवधि में बजाज ग्रुप ने चुनावी बॉन्ड्स के जरिए 3 करोड़ रुपये की भारी राशि आपको दान में दी। समर्थन की यह यात्रा 23 अप्रैल 2018 से 25 मई 2019 के बीच जारी रही, जिसमें आपको कुल 5.75 करोड़ रुपये मिले। यह विस्तृत जानकारी हमें दिखाती है कि किस तरह से बड़े उद्योग समूह राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम लेकर आएंगे और भी रोचक जानकारियां। मूविंग टू लास्ट आर्टिकल, आइए नजर डालते हैं 2023 के ताज़ा अपडेट पर, जो चुनावी बॉन्ड्स के प्रभाव से राजनीतिक दलों की फंडिंग पर पड़ने वाले असर का खुलासा करता है। चुनाव आयोग ने 12 अप्रैल 2019 से पहले राजनीतिक दलों को दिए गए चुनावी बॉन्ड पर डेटा जारी किया है, जो अब इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये डेटा हाल ही में सार्वजनिक रूप से जारी किए गए डेटा का अनुसरण करता है और लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ मेल खाता है। इस अपडेट से यह स्पष्ट होता है कि चुनावी बॉन्ड्स ने किस तरह से राजनीतिक दलों की फंडिंग की दिशा और ढांचे को प्रभावित किया है। और इस समय के लिए बस इतना ही है। हमारे पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक या आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर सुने। हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें ताकि आप शीर्ष कथाओं के वीडियो शॉर्ट देख सकें। धन्यवाद और शुभ दिन।